जय जगन्नाथमी
प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथरामी नयन पथरामी भवत मे हरि वा हरि वा हरि वा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
जय विष्णुपाद परमच प्रवेश अष्टोत्तर शिष्य चंद्र भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की विष्णु भी विलिगे चंद्र जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नित्य लाभ विष्णु जय विष्णुपाद परमच प्रवेश अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत सरद्र श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल वरदास अरुणाचल विश्व वृंद की जय राधा कृष्ण गोपुर राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय अदिया नवदीप धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय पुरी श्रीक्षेत्र धाम की जय श्री गौर निताय की जय कृष्ण बलराम की जय राधा श्याम सुंदर ललित विशाखा की जय जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय भक्त रखेग सुदर्शन चक्र की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज मंद भागवत महा निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नमो ब्राह्मणे देवाय गोब्रह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्रीमद्भागवतम स्कंद चार अध्याय 23 श्लोक नंबर 26 सा ऐसा नूनम व्रजति ऊर्ध्वम् अनु वैन्यं पाते सति पश्यत अस्मान् अतित्ये अर्चि दुर्विभावेन कर्मणा शैष्यानुनं व्रजति ऊर्ध्वं मानो वैन्यं पतिं सति पश्यति आस्मानं तित्या ఆచి దుర్విభావన కర్మణ శైష్యానం ప్రజతిర్ధం మానో వైన్యం పతిం సతి పశ్యత్యాస్మాన్ త్యార్చి దుర్విభావన కర్మణ శైష్యానం ప్రజతిర్ధం మానో వైన్యం పతిం సతి పశ్యత్యాస్మాన్ త్యార్చి దుర్విభావన కర్మణ శబ్దానువాద స వహ ఏషా ఇహ న్యూనం అవశ్య వ్రజతి జారహి ఊర్ధ్వం ఉపర్ కి ఓర్ అను పిచే పిచే వైన్యం బేన్ కి పుత్ర పృథు పతిం పతి సతి సతి పశ్యత జరా దేఖో తో అస్మాన్ హమ్కో ఆతిథ్య ఉపర్ సే పార్ కర్కే లాంగ్ కర్ అర్చి అర్చి దుర్విభావేన అకల్పనీయ కర్మణ కార్యం సే अनुवाद और भावार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की देवों की पत्नियों ने आगे कहा जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्म में कर्म के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करते हुए ऊपर की ओर जहाँ तक हम देख सकते हैं चली जा रही है। तात्पर्य महाराज बुद्ध का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान ये दोनों ही स्वर्गलोक के नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। यद्यपि वो उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थी और पृथ्वी महाराज निम्न लोक पृथ्वी के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर वैकुंठ लोक जा रहे थे। ऊर्ध्वम ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नारियां बात कर रही थी वे चंद्रमा सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोक की थी। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्य आकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक है। अतः ऊर्ध्वम शब्द सूचित करता है कि वैकुंठ लोक इन्हीं भौतिक लोकों से परे या ऊपर है और पुत्र तथा उनके पत्नी अर्ची इन्हें वैकुंठ लोक को जा रहे थे। इससे यह भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनके पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमान में बैठ गए, जो भौतिक तत्व को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते हैं, वे पृथक पृथक विमान में आरूढ़ थे। अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि चिता में भस्म होने पर भी उनके शरीर पृथक पृथक व्यक्ति रहे। दूसरे शब्द में उन्होंने कभी भी अपने सता नहीं खोई, अर्थात तो शून्य नहीं हुए, जैसा कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं। स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थी। जब ये नीचे देख रहे थी तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अर्चक को चिता में प्रविष्ट होते देखा, और जब ये ऊपर देख रही थी तो उन्हें देखा कि ये दोनों अलग अलग विमान में किस तरह वैकुंठ लोक को जा रहे थे। ये सब दुर्विभावना भावन कर्मणा अर्थात अचिंत्य कर्म द्वारा संभव है। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनके पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी, फलतः ये दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वह अचिंत्य कर्म करने में सक्षम थे। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं, ना ही सामान्य स्त्रियां पतिव्रत्य धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती है। स्त्री को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं जितने की अपने भक्त पति के चरण चिन्ह पर चलने की है, तभी पति तथा पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। यह महाराज पुत्र तथा उनके पत्नी के अचिंत्य कर्म द्वारा प्रत्यक्ष है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुशितपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश श्रीरूपं सागरतं सघनारघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसहगणललिता श्रीविशाखानिताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभेश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। प्रातः काल ने भागवत कक्ष में श्री श्री कृष्ण मलाना का मंदिर का ओर से आप लोग सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है महाराज पुत्र का भगवत धाम गमन, अभी 2015 तो खत्म होने वाले हैं, दो दिन और रह गया आज और कल। अरे ये पृथु महाराज, लेकिन आज का जो श्लोक है ये श्लोक में ज्यादा माताओं लोग के ऊपर बताने के लिए कहा गया है, तब माताओं लोग पहले से आपको आप क्षमा कर देना क्या, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा गया है वो चीज बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज शास्त्र में लिखा गया है, लेकिन फिर भी हो सकता है माता जी का साइड में पल्ला पलटी जाए, फिर भी क्रोध नहीं करना है, लेकिन शास्त्र का अनुसार जो कहा गया है, क्योंकि आप बहुत दिन से सुनते आ रहा है, लेकिन महाराज भी व्याख्या कर चुके हैं सती नारी का कर्तव्य क्या है, लेकिन सती नारी का ऊपर आज बताऊंगा, लेकिन सती नारी का क्वालिटी क्या होना चाहिए। कोई ड्रेस पहन के सती नारी नहीं बन सकता है, बनता है? कोई ड्रेस अच्छा ड्रेस पहन लेगा सती नारी बन जाएगा? अच्छा सेंट पेंट क्रीम लगा के ऐसा बन सकता है? वो भी नहीं। हर चीज़ का क्वालिटी होता है, उसका गुण होता है, गुण का अनुसार व्यक्ति को समझा जा सकता है। जिस प्रकार ब्राह्मण का अंदर गुण होता है, ब्राह्मण का अंदर 9 गुण होने से ब्राह्मण माना जाता है, भगवद गीता में वर्णन है, उसी प्रकार क्षत्रिय का अंदर 6 गुण और वैश्य का अंदर 3 गुण और शूद्र का अंदर 1 गुण होने का नाते उनको माना जाता है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है। और साधु भी ऐसा ही, साधु का अंदर 6 क्वालिटी होगा तब जाकर आप साधु को मान सकते हैं, ये साधु है। उसी प्रकार सती गुण का अंदर कितना गुण होने से आप सती नारी में रजिस्टर्ड में आएगा, सती नारी ये है। लेकिन बहुत गुण है, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉइंट आउट किया है, लगभग 20-25 पॉइंट है जो कि सती नारी का अंदर ये गुण होना चाहिए। एक ही सती नारी अपना पति को बचा सकता है और एक ही सती नारी क्या कर सकता है, ये धरती को भी नष्ट कर सकता है, सांप देकर किसको भी भस्म कर सकता है। इस सती नारी का इतना पावर है। लेकिन हर जगह पर आप सुना होगा पतिव्रता स्त्री, बहुत सारा जगह पर व्याख्या है पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है पतिव्रता? पति का व्रत को धारण करने वाले, पति जो कुछ करता है उसको अनुगमन करना, इसको कहते हैं पतिव्रता। इसीलिए सीता का, माता सीता का पास है पतिव्रता नारी कहा गया है, जो अनुगमन। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी प्रकार सीता को, माता सीता पतिव्रता नारी थे। एक बार जो रावण ने सारा संपत्ति इकट्ठा करता था, एक बार सारा इकट्ठा करके हीरा का टुकड़ा सब रखा, हीरा का टुकड़ा समझ सकते हैं, हीरा का जो भी मोतियां आप समझ सकते हैं जो भी है, तब उन्होंने इकट्ठा की। तब विभीषण ने देखा, रावण का भाई विभीषण, विभीषण ने देखा ये रावण इसको क्या करेगा। तब विभीषण ने इसको माला बनाई, माला बना के तो विभीषण ने सोचा वो रावण के लिए शोभा नहीं देगा, रावण के लिए ये हार शोभा नहीं देगा, ये माला किसके लिए होना चाहिए, भगवान राम के लिए। तो विभीषण ने ये माला को जब भगवान राम का क्या अभिषेक, राज्य अभिषेक हो रहा था, तब वो टाइम पे विभीषण ने अपना हस्त से लेके उनको चढ़ाया। चढ़ाने के बाद भगवान राम देखे मेरा के लिए शोभा नहीं पा रहा है, तो भगवान राम ने अपना माला को गला से निकाल के साथ में बैठी ही कौन, माता सीता को गला में दे दिए। माता सीता के गला में देने का नाते माता सीता भी इसको देखे, स्वयं पतिदेव अपना उच्चारण करते हैं, माता सीता उच्चारण करते हैं मेरा पतिदेव पहना नहीं, मैं कैसा पहनूं। फिर अपना हीरा का माला को निकाल के और साथ में बैठे सेवक राम कौन, हनुमान जी बैठे हैं, तब हनुमान जी को दे दिए, हनुमान जी को गला में दिए। और हनुमान जी फिर देखे मेरे प्रभु नहीं पहने, माता सीता भी नहीं पहने और मैं इसको पहनूं, मेरा के लिए शोभा नहीं देता है। फिर भी उन्होंने, जात में तो बंदर है, बंदर का कर्तव्य क्या होता है, कुछ भी ले लेता है। जैसे इधर वृंदावन में बंदर चश्मा खींचता है, पहले लेके कहाँ पे लगाता है, पहले मुख में, और बंदर यही है। तो वो बंदर कहा ये गुण है, पहले लेगा तो पहले मुख में आएगा। तब वो हीरा का माला को टुकड़ा करने लगा, दांत में लगा के टुकड़ा करने लगा। तब सभा गृह में जितना सब लोग बैठे थे, बैठ के बोलने लगे, बोले हीरा का कीमत क्या मालूम है, बंदर जात में तो बंदर है, सो क्या मालूम है हीरा का कीमत कितना होता है। हनुमान जी सुनते हुए बोलने लगा, क्या बोला, मैं जात में बंदर हूं लेकिन ज्ञान में बंदर नहीं हूं। तब बोला जिसमें राम है उसको रखता हूं, जिसमें राम नहीं है इसको तोड़ कर फेंकता हूं। तो सभागृह में पूछने लगे, बोले ये शरीर क्यों रखा, ये शरीर के अंदर क्या राम है क्या, ये शरीर के अंदर क्या राम है क्या? हनुमान जी बोले हाँ जी राम है, लेकिन आप देखना चाहते हो दिखाऊंगा, नहीं देखना चाहते हो फिर चश्मा लगाओ। तो उन्होंने फिर अपना छाती को फाड़ के क्या दिखाया, समझ में आया? तब पतिव्रता नारी का क्या कर्तव्य होता है, पति जो अनुगमन नहीं करता है पति को अनुगमन करना चाहिए, पति जो कर रहा है अपना मनमानी नहीं। बहुत सारे पॉइंट है, जिसी प्रकार बताते हैं आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है, आदमी भावना से नहीं नहीं आदमी भवनों से नहीं श्रेष्ठ बनता है, भावना से श्रेष्ठ बनता है, आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। इसलिए आचरण चाहिए, इसलिए भावना चाहिए, और इसलिए साधना चाहिए श्रेष्ठ बनने के लिए। तब सती नारी क्या 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 क्वालिटी है, पति कुरूप हो या दुराचारी हो, अच्छे स्वभाव को हो या बुरे स्वभाव को हो, रोगी हो क्रोधी भी हो बूढ़ा हो जाए, चालाक भी हो अंधा भी हो बेहरा भी हो, भयंकर स्वभाव का क्यों नहीं हो, दरिद्र हो जाए कंजूस भी हो जाए घृणित हो जाए कायर भी हो जाए धूर्त अथवा परस्त्री लंपट ही क्यों नहीं हो, सती साधुई स्त्री के लिए वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा देवताओं का भांति पूजनीय है। देवता के लिए देवता तुल्य है, पूजा करना चाहिए। इसी में आगे आएगा, आपका मन में प्रश्न आएगा बाई चांस, यह भक्त का सामने में ये चर्चा किया जा रहा है, कर्मी लोग का सामने अलग तरीका चर्चा किया जाएगा, ऐसा नहीं लेने का अभी ये स्टाफ पर, क्योंकि भक्त लोग के लिए क्या चर्चा किया जा सकता है और कर्मी लोग बाहर का लोग जो भक्ति लाइन में नहीं है उनके लिए क्या कैसा चर्चा किया जा सकता है, लेकिन आप लोग का मन में फिर भी प्रश्न आ सकता है, कोई दारू पी रहा है कोई वेश्यागमन कर रहा है तो इसका साथ कैसा रहना है, और झूठ बोल रहा है पैसा कमा रहा है ये कर रहा है चीटिंग कर रहा है तो वो स्त्री उसका सेवा कैसा करेगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन होने से फिर भी पति को छोड़कर नहीं जाने का, पत्नी को कर्तव्य होता है, पत्नी का अपना धर्म को निभाना है, पत्नी का धर्म अपना निभाना है, कैसा जैसा मंदोदरी पति को समझाया, ऐसा नहीं छोड़कर गया कभी छोड़कर नहीं गया, मंदोदरी समझाया अपना धर्म को निभाना है, यह है पतिव्रता का कर्तव्य। दूसरा, स्त्री को कभी किसी प्रकार की अपने स्वामी के साथ अनुचित वार्तालाप नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की स्वामी के सामने जो उचित है बात करने का, नहीं तो मौन व्रत ले लेने का, नहीं तो मुख नहीं खोलने का। स्त्री बालिका हो या युवती हो अथवा वृद्धा ही क्यों नहीं हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना, पति से पूछ के करने का, अपना मन से नहीं करने का। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करने के उचित है, दूसरा पुरुष का साथ नहीं। इसका ऊपर और एक पॉइंट आया मन में, आपको बता रहा हूं। अहंकार और काम क्रोध का त्याग करके केवल अपने पति का मनोरंजन के लिए कार्य करने का, जैसा बालिका पत्नी, कौन बालिका पत्नी का नाम क्या है, बालिका पत्नी का नाम तारा। तब बाली को मारने का, भगवान मारने का बाद तारा सुग्रीव का दर्शाते शादी करने का बाद, और सुग्रीव लेकर कहां पे रखा, अपना घर पे रखा। तब भगवान को जो बताया था जो कार्य करने के लिए वो उसी मनोरंजन में भूल गया। तारा का साथ बैठ के सुग्रीव ने क्या कर रहा था, सारा डांस चल रहा था। हरा वो डांस देखते देखते भगवान का साथ जो शपथ था करने के लिए, संकल्प लिया था जो करने के लिए, वो संकल्प को भूल चुका। फिर लक्ष्मण आए तब वो चीज याद दिलाए। अब सोचो तो पत्नी का साथ, पत्नी इसी प्रकार मनोरंजन में भाग लेना चाहिए। पति का क्या उद्देश्य? पर पुरुष के काम भाव से देखने पर प्रिय लगने वाले वचन द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जनसमूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता तथा जो पर पुरुष द्वारा धन को धन का लाभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन वाणी शरीर और क्रिया से कभी पराय पुरुष का सेवन नहीं करती, वो है सती। वो है संपूर्ण लोक की स्वभाव दे सकती है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़े जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती है। जो पराय पुरुष के देखने पर भी स्वयं उनकी और नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती और के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षण वाला स्त्री साध्वी पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। जब तक पति नहीं बोलता है पत्नी नहीं बोलना चाहिए, जब तक पति नहीं हंसता है पत्नी नहीं हंसना चाहिए। ऐसा हो सकता है कलयुग में क्या? लेकिन हमारा जो मिशन है, जो संस्था है, ये संस्था में धीरे धीरे पालन करने के लिए दिया गया, लेकिन ये चीज पढ़ के सीखना चाहिए और अपना जीवन में आचरण करना चाहिए। धीरे धीरे तो कम से कम स्टेप वाइज चलना चाहिए। ये संस्था इसीलिए, ये संस्था हर चीज को शिक्षा देता है। शास्त्र में हर चीज शास्त्र में बनना है, शास्त्र के सामने फॉलो करना है, शास्त्र का विरोध नहीं जाना है, शास्त्र को ही फॉलो करना है, उन्हीं का चरण चिन्ह पर चलना है। जैसा सात नहीं पांच नारी जो पतिव्रता कहते हैं ना, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। ये पांच नारी का नाम सुबह कोई लेता है ना, महापातक नाशनम, पाप से मुक्ति हो जाएगा। पांच का नाम लेते, दूसरा अर्थ में बोलते हैं और सुबह उठते हुए क्या करना चाहिए, जैसे कहते हैं दूसरा अर्थ में, कराग्रे बसते लक्ष्मी करा मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठते हैं हमें हाथ को देखना चाहिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, इसका सामने लक्ष्मी वास करते हैं। दूसरा अर्थ में बोलते हैं जुहाग्रे बसते लक्ष्मी, ये जुहा के माध्यम से लक्ष्मी आता है, लेकिन सुबह उठते तो पहले हाथ का अग्रभाग को देखना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी करा मध्य सरस्वती, ये बीच में सरस्वती वास करते हैं और करमूले तू गोविंद, मूल में गोविंद वास करते हैं, प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। सुबह उठते हुए तो पहले पति का चरण को दर्शन करो, ये सारा चीज मिलेगा। होता है अभी पति का चरण को दबाते नहीं तो चरण दर्शन कहां से होगा? पति का चरण को दबाते दबाते गला भी दबा देते हैं। इसलिए ये पांच है सती नारी का नाम लेना चाहिए। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साधु स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लेना चाहिए। ये भी मन में विकार नहीं लेना चाहिए। रूप और यौवन से संपन्न संगीत की कला कोई पुरुष में इतना क्वालिटी आ जाता है तब पति दब धारण किया फिर दूसरा का पति का ऊपर मन में भी विचार नहीं लेना चाहिए। मन में भी जो सुंदर तरुण रमणीय और कामिनियों का प्रिय लगने वाले महापुरुषों के भी कभी इच्छा नहीं करती उसे महासती कहा जाता है। पराय पुरुष देवता मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो वो सती स्त्री लोक प्रिय नहीं होता है, सती स्त्री के लिए वो प्रिय नहीं होता है।
पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति का अप्रिय जान पड़े।
पत्नी को ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए पति को अप्रिय हो जाए, दुश्मन हो जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
जो पति के भोजन कर लेने का बाद भोजन करती है,
अभी ऐसा होता है,
पत्नी को क्या करना चाहिए, पति का भोजन का बाद भोजन करना चाहिए,
लेकिन अभी तो समय मिलता नहीं, बोलता है पति कब आएंगे, हम पहले खा लेते हैं, कुकिंग खत्म हुआ इमीडिएटली खाना शुरू हुआ। पतिव्रता का ये कर्तव्य है, पति खाने का बाद, पति सोने का बाद और पति जागने का पहले जागे, ये पतिव्रता का कर्तव्य है। अभी संसार में है नहीं,
पति सोने का पहले सो जाएगा, पति जागने का बाद है, जागने का बाद ही जागेगा।
ये
भोजन करने का बाद भोजन करें और पति दुखी होने पर दुखित करें, दुखित तो हो जाए और पति आनंद में ही आनंद मानती, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती, पति सो जाने पर सोती और पहले जग जाने के बाद जगने का पहले जग जाती, पति के मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती और दूसरे पुरुष का कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती, उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए, वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम करें, संभव काल में संकोच न रखें और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखें। लेकिन अभी संसार में पवित्रता रखने के लिए सब सेंट क्रीम लगाते हैं, सोचते हैं ये सब पवित्र बन जाएंगे, लेकिन कोई क्रीम से पवित्र नहीं होता है। ब्रज रज में पवित्र बन सकता है, लेकिन ब्रज का रज को लगाएंगे तब इसका ऊपर है कि बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, आप लोग जानते होगा, ये बहुत एक पुराण से वर्णन आया है, ब्रज राज का कितना वैल्यू है आपको बताया होगा, लेकिन फिर भी कि नहीं बोला होगा तो फिर बता दे रहा हूं। एक बार नंद महाराज तीर्थराज में स्नान करने के लिए सोचा था, तीर्थराज का नाम है प्रयागराज, दूसरा नाम है प्रयागराज जो इलाहाबाद को कहते हैं। नंद महाराज सिर्फ मन में सोचा है तीर्थराज में स्नान करना है, तब तीर्थराज में स्नान करने के लिए सोचा, तब नंद महाराज का बेटा का नाम कृष्णा, कृष्ण तो स्वयं अंतर्यामी है, तो समझ गए मेरा पिताजी तीर्थ में स्नान करने के लिए क्यों सोच रहा है, जब ये धरती पे है तीर्थ में स्नान करने के लिए क्यों सोच रहा है, ठीक है। तब तीर्थराज का राजा कौन है, भगवान कृष्ण है, नाम तो दिया गया है तीर्थराज है प्रयाग, लेकिन भगवान ये तीर्थराज का राजा है। तब अंतर्यामी भगवान कृष्णा स्वयं एक तीर्थराज को घोड़ा बना के नंदा महाराज के घर का सामने छोड़ दिए, तब यह घोड़ा का शरीर था कालापन, कैसा था कालापन, और नंदा महाराज सुबह उठते हुए देखे घर का सामने घोड़ा घूम रहा है, तब देखते हुए वो काला घोड़ा सफेद बन गया, तब नंदा महाराज आश्चर्य होने लगे, हाथ जोड़ के पूछने लगे, आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, ये क्या लीला है, क्या मेरा कुछ स्वप्न लगा, मेरे स्वप्न देख रहा हूं क्या, अपना कुछ मन में विचार ले रहे हैं। लेकिन हाथ जोड़ के जब पूछने लगे, घोड़ा अपना आवाज से बोलने लगा, क्या बोला, बोला मैं तीर्थराज हूं, आप इधर कैसा आ गए, बोला तीर्थराज हूं लेकिन सारा संसार का लोग मेरा तीर्थ में स्नान करने का बाद सारा पाप धोत होने का नाते मेरा शरीर क्या बन गया था, काला बन गया था, जब से मैं ये तीर्थ में आया, ये धरती पे आया, ब्रज में जब से आया, ये ब्रज का रज मेरा शरीर में पड़ के मैं क्या बन गई, सफेद बन गई, तब ये ब्रज रज का क्या वैल्यू है, तब ये ब्रज का रज को स्पर्श करते हुए काला घोड़ा सफेद बन गया। तब नंदा महाराज है मन में विचार आया, जो तीर्थ सारा तीर्थ यहीं पे है, मेरा को तीर्थ में स्नान करने का जाने का क्या है आवश्यक है। तब तीर्थराज यहीं पे है, तीर्थराज का राजा यहीं पे है, ये ब्रज राज में कितना वैल्यू है हमको अभी तक भी मालूम नहीं। लेकिन कोई सेंट क्रीम ऑयल कितना हजार हजार प्रकार के साइंटिस्ट लोग ऑयल निकालते रहे और शरीर को चिकनपन करने के लिए क्या क्या लगाते हैं, लेकिन ऐसा लगा के कोई पतिव्रता नहीं बन सकता, कोई सती नहीं बन सकता है। इसलिए कहते हैं पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर अपने पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए, वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम रहे, शरीर को सदा पवित्र बनाए रखें, पति की मंगल कामना करें। कभी मंगली के कुछ कामना करते हैं तो पति के लिए ही कामना करना चाहिए, उसके लिए भलाई हो। उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाते रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने में रखने की चेष्टा करें। खेत से वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आते हैं तब उठकर उनको स्वागत करें। कभी पत्नी बैठा है, पति बाहर गया है, बाहर से वापस आता है, तब पत्नी इमीडिएटली खड़ा हो जाना चाहिए, स्वागत करें। और पत्नी अभी उठता नहीं, बोलता है कमर दर्द है। ये पतिव्रता का कर्तव्य है, कभी बाहर गए बाहर से आए हैं तो इमीडिएटली उठ के स्वागत करना चाहिए। और आसन और जल देकर अभिनंदन करें और बर्तन लेके अर्णों को अर्ना परसना उनको खान पान क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनसे पूछताछ करना चाहिए। समय पर भोजन बनाकर दें, संयम से रहे, अनाज को छिपा कर रखें, घर को झाड़ बहा कर स्वच्छ बनाए रखें। गुरुजन और पुत्र मित्र भाई बंधु काम करने वाले सेवक अपने आश्रम में रहने वाले भृत्य दास दासी अतिथि अभ्यागत सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोग को आसन और भोजन देने और सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वामी की आज्ञा के लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दे, स्वामी को बिना पूछे दूसरा को किसी को भी, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लोग होता है अपना ससुर का घर का संपत्ति को सारा किसका घर में भेज देता है स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दें। दूसरे पुरुष के पुरुष से वार्तालाप असंतोष पराय कार्य की चर्चा अधिक हंसी अधिक रोष अधिक क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वदा त्याग करें। पतिदेव जो जो खाद्य पदार्थ न खाएं न पिए ना मुख में न ढालें वो सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। पति जो नहीं ग्रहण करता है पत्नी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और फिर भी मन में प्रश्न आएगा, मैं तो पत्नी को ही पूछेगा, मैं तो भक्ति कर रहा हूं मेरा पति दारू पी रहा है। ऐसा नहीं कि वो भी दारू पी रहा था हम भी दारू पीना है क्या नहीं है, फिर हो सकता है आपका मन में यह प्रश्न आता होगा, लेकिन ये नहीं है। पति का पुण्य फल पुण्य कर्म से पत्नी को आधा मिल जाता है, ये शास्त्र के वर्णन है, लेकिन पाप का फल नहीं मिलता है, पाप का फल नहीं मिलता। पत्नी का पाप का फल पत्नी को मिलेगा और पति का पाप का फल, लेकिन पत्नी पति का सेवा कर रहा है और पति भक्त है और उसका आधा पुण्य फल मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को बहुत सारा जगह पे जब प्रचार में जाते हैं प्रचार में बोलते हैं, बहुत सारे पति लोग पूछते हैं, माता लोग पूछते हैं, हाँ हमारा पति तो इतना माला करता है। बोला वो पति आपका पति बाई चैनल 16 माला करेगा और आप उन्हीं का श्री भी सेवा निष्ठा पूर्वक करोगे तब 16 माला से आपको 8 माला आपका बैंक में बैलेंस हो जाएगा, आपका अध्यात्म के स्पिरिचुअल बैंक में बैलेंस हो जाएगा। 8 माला आपका नाम से बैंक है ऑलरेडी डिपॉजिट है, आप सिर्फ निष्ठापूर्वक को सेवा करने का। जैसे कोई कोई प्रभु लोग हमें बोलते हैं कम से कम आप ज्यादा माला करो नहीं तो आपका पत्नी आपका आधा भाग ले लेगा, आपको क्या मिलेगा फिर? इसीलिए कम से कम आपको माला थोड़ा बढ़ाओ और थोड़ा बढ़ा दोगे तो फिर आपका आधा माला उनका साइड में जाएगा, बिना पूछे बिना बताए वो लेकर चले जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा माला को बढ़ाने का। और पतिदेव क्या बोलते हैं? बोलते हैं मन नहीं लग रहा है माला में, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं माया संसार कार्य में बहुत व्यस्त रहता है, माला नहीं कर पाते, ये नहीं होता, ये नहीं होता। नहीं, अब करना पड़ेगा, जबरदस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक उनका बैंक में चला जाएगा। जो खाद्य नहीं खाता है, जो नहीं पीता है, उसको पत्नी को छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहीं नहाना है, शरीर में उबटन लगाना और दांत में मंजन करना और धोना, केश को संवारना और उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं नहीं बैठना, अधिक समय तक किसका पास नहीं बैठना, नए नए वस्त्र को नहीं पहनना है और श्रृंगार करना निषिद्ध है। सिर्फ श्रृंगार करना है जब पति रहता है साथ में, पति नहीं बाहर गए हैं ना, कपड़ा मैला गंदी हुई कपड़ा भी पहनना है, मतलब कभी श्रृंगार करके नहीं। अभी तो संसार में पहले पति कहाँ भी जाए अपना मोबाइल पकड़ा, फेसबुक में बैठा, बस श्रृंगार वगैरह अपना फोटो खींच के फेसबुक में डाल दिया और सब लोग क्या बोलेंगे, लाइक कमेंट मारेंगे। अभी क्या टाइम है, अभी टाइम चल रहा है ऐसा। और ये जो पतिव्रता धर्म सत्य युग में नहीं, त्रेता युग से चालू हुआ। त्रेता से चलकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतु धर्म होता है और उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी को स्पर्श वर्जित है, दूसरे दिन वह ब्राह्मणी की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र माना मानी गई है, तीसरे दिन वह धोबी के तुल्य बता गया है, चौथे दिन स्नान करके वो शुद्ध होती है। स्त्री पराय पुरुष के नाम का गान और पराय पुरुष के गुण का वर्णन न करें, पति से दूर न रहें, सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करें, पति से दूर नहीं बैठें, सामने में बैठें। इसी प्रकार अभी मंदिर में इंचार्ज हो जाते हैं, इंचार्ज के सामने भक्तों लोगों को घूमना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ सेवा करे नहीं करे सामने में आ जाना चाहिए, दंडवत कर देना चाहिए, सही है। इसी प्रकार पत्नी को रहना चाहिए। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ही मुख किए रहे, स्वच्छता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले, दूसरा दिशा को देख के बात नहीं करने का, पति के सामने बैठे पति का सामना सामने बात करने का, और लेकिन पति का मुख को नहीं देखे, उसका चरण को देखे, आंख को आंख कभी नहीं मिलाने का। पतिदेव यदि कोई तथा करते हैं तो स्त्री उसे बड़े आदर का साथ सुने, पति बातचीत करते हो तो स्वयं दूसरे से बात नहीं करें, यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चल जाए, यदि स्वामी बुलाता है जल्दी से जल्दी भाग के आना चाहिए, नो ट्रैफिक, सीधा जल्दी से जल्दी। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी की उबटन लगाएं, फिर शुद्ध जल से सब अंग को धोकर सुंदर श्रृंगार करें, उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाएं, मन वाणी और शरीर को संयम से रखने वाली नारी ऐसे वार्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती और परलोक में पति का साथ साजुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। और पतिव्रता और साध्वी और सती, इसमें क्या फर्क है, कोई बता सकता है तीनों में क्या फर्क है? समझने में कोई फर्क नहीं है, है क्या फर्क है कुछ? पतिव्रता साध्वी और क्षति, लेकिन शास्त्र का अनुसार थोड़ा सा फर्क देखा गया है, लेकिन क्या है, साधारणतः शब्दार्थ दृष्टि से तीनों का अर्थ समान है। तथापि पति जीवित रहने समय पर जो स्त्री पति का दृढ़ नियम का पालन करती है उसको कहते हैं पतिव्रता। पति का मृत्यु हो जाने पर जो नीति नियम को कठोर तरफ से कठोरता साथ त्याग नहीं करती उसको साध्वी कहा जाता है। जो सत्य को पालन करती है, जिसका पति का सह दृढ़ संबंध और पति मृत्यु हो जाने पर उसी अग्नि में चला जाती है उसको सती कहती है। तीनों में कोई डिफरेंट इतना नहीं है। अब पतिव्रता को कैसा पहचान सकते हैं? पतिव्रता गृह में सर्वदा शांति विराजमान होगा। जो पतिव्रता नारी होगा उसका घर में हमेशा के लिए शांति रहेगा, कोई कलह नहीं होगा। अभी जैसा संसार में अभी आप देख रहे हैं, ये कलयुग में और आगे बढ़ते जाएगा। जो पहले समय पे पिता माता चॉइस करते थे शादी कराने के लिए, लेकिन अभी का टाइम पे अपना मन विचार, ये विचार लेकर जब शादी होता है कलह सृष्टि होता है। पहले समय पे कुंडली मिलन होता था, अभी कुंडली मिलन नहीं है, अभी कुंडली मिलन नहीं, आग का मिलन है। पहले कुंडली मिलन होता था, इतना गुण पति का, इतना गुण का सर और पत्नी का इतना गुण मिलन होगा तब जाकर शादी होता था। अभी कुंडल मिलन नहीं, आग का मिलन हो गया, शादी हो गया बस, तब कड़ा होता है। लेकिन पतिव्रता जो स्त्री होगा उनका घर में हमेशा शांति विराजमान रहेगा, कभी कला नहीं होगा। घर पर सब लोग अपना अपना धर्म पालन करते रहेंगे, अपना अपना धर्म पालन करेंगे घर पर। संतान लोग माता पिता का भक्ति करेंगे। जो संतान जात संतान मतलब जन्म लेते हुए अपना पिता माता का भक्ति करने लगेंगे और पिता माता का आदेश को फॉलो करेंगे। अभी तो पिता माता का फॉलो नहीं करते, जो बच्चे होते अभी पिता माता का फॉलो नहीं करते। और पड़ोसी लोग हर जगह पे उनका गुणगान करेंगे, पतिव्रता नारी का घर का बारे में सब बताएंगे, ये घर बहुत अच्छा है, ये घर में ऐसा है ऐसा, उसी परिवार का बात है आलोचना करते रहेंगे। ये है पतिव्रता नारी का घर का पहचान। और पति दुष्चरित हो जाने से पत्नी क्या क्या करेगा, पत्नी क्या करना चाहिए बताओ, इतना बताने के बड़े बाद है, फिर आप लोग बताओ। पति जब दुष्चरित हो जाता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या पत्नी छोड़ देना चाहिए? क्या जहर पी लेना चाहिए? क्या दूसरा के पास चले जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? पति दुष्चरित हो जाने से पत्नी उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, अपनी पतिव्रता धर्म पालन करके पति को समझाना चाहिए। पहले पति को समझाना चाहिए, जैसा मंदोदरी रावण को समझाया किंतु परित्याग नहीं किया। विवाह समय में स्त्री पुरुष अपने अपने कर्तव्य के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। उसी दृष्टि से पति को सब परामर्श देने के लिए पत्नी का अधिकार है। गांधारी इतना पतिव्रता थी जो कि विवाह पहले स्वामी अंध जानबूझकर अपनी आंख में पट्टी डाल दी, वो जानती थी, नहीं तो अभी का टाइम पे ऐसा होगा तो मना कर देगा पहले से, है कि नहीं। स्वामी अपना जीवन में नेत्र की सुख अनुभव नहीं कर पाए, धृतराष्ट्र अपना आंख की जो आनंद वो अनुभव नहीं कर पाए, तब गांधारी भी उसी सुख से वंचित रहे, फिर भी धृतराष्ट्र को उत्तम परामर्श देते रहे। दुर्योधन का असत कार्य को समर्थित न देकर कुलनाश हो जाएगा ये समझा रहा है। गांधारी ने कितना बार समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र इस बात सुनकर कुरुवंश उसी बात सुनते हुए फिर भी कुरुवंश को ध्वंस कर। इसलिए पतिव्रता कर्तव्य, पतिव्रता नारी का ये कर्तव्य है। इसलिए आज का जो श्लोक है वही पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। पतिव्रता नारी सती नारी होने से दोनों का दोनों ऐसा नहीं, और ये जो मिलन होता है ये आपका तरफ से मिलन नहीं होता है, ये भगवान का कुछ कृपा रहता है और भगवान का इच्छा से मिलन होता है, और हमेशा मिल जाएगा ऐसा व्यक्ति नहीं है। अभी बहुत व्यक्ति का घर पे झगड़ा होता है, कलह होता है, और बहुत व्यक्ति का घर पे अभी जो डिवोर्स है वो नहीं था, अभी आ रहा है, आगे और बढ़ते जाएगा। लेकिन क्योंकि शास्त्र का ऊपर लोग चलते नहीं, शास्त्र को मानते भी नहीं, शास्त्र को अनुसंधान नहीं करते, शास्त्र पढ़ते नहीं, हर चीज शास्त्र में है। इसलिए कहते हैं भागवत जो है गृहस्थ धर्म का निभाने के लिए एक पैकेज है, हर चीज का पैकेज होता है। ये भागवत गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए एक पैकेज है। आपका आपका लाइफ कैसा बिताना है, ये लाइफ का एक पैकेज है भागवत। इसलिए भागवत को हर चीज भागवत में ही मिलेगा, लेकिन लोग भागवत पढ़ते हैं। भागवत जो बताएं इसको अपना जीवन में पढ़ के उतारना चाहिए। लोग भागवत कथा कर देते हैं 7 दिन, बोले कथा कर रहा है, मैं बहुत बड़ा कथा करा रहा हूं, लेकिन भागवत में क्या कहा गया आचरण। और ये जो मिलन होता है, फिर ये शरीर छोड़ने का बाद है, जिसी प्रकार पृथ्वी महाराज और अर्ची दोनों साथ साथ, और दो विमान आया, एक ही विमान नहीं दो विमान, दो विमान में बैठे वैकुंठ लोक को जा रहा है। ये जड़ शरीर को त्याग किए और सीधा उनके लिए विमान आया, पुष्पक विमान, और वो विमान में बैठे वैकुंठ लोक को गमन किए। और हम लोग को जाने के लिए अभी से हमको तैयार करना पड़ेगा। हम लोग को अभी ऑलरेडी प्रभुपाद का मिशन में जोड़ जाना, और प्रभुपाद मिशन को नहीं छोड़ने का, मिशन में जोड़ जाना। और प्रभुपाद ने उसी जो जहाज है जो वैकुंठ लोक को यात्रा कर रहा है, वो यात्रा का नाविक है। आप सिर्फ प्रभुपाद का मिशन को पकड़ के रखने का, मिशन में जुड़ा रहना है, और वो डायरेक्ट जाके वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की संवेद गौर भक्त वृंद की।